13th February 1983, Avyakta Murli. Dadi Janki se personal mulaqat. Baap saman bhav ki vardani hona. Double seva karte ho. Bachchi ki mansa seva ki safalta bahut achhi dikhai de rahi hai. सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो. सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं. बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो. प्रकृति जीत का अच्छा ही पार्ट, प्रत्यक्ष पार्ट बजा रही हो. अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पार्ट अच्छा चल रहा है. प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है. अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे. विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा. सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया. इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो. अच्छा माइक लाया है. याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है. अच्छा बगीचा तैयार किया है. अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं. February 18, 1983 दादी जानकी से मुलाकात. बाबा कह रहे हैं, बाप समान भव की वरदानी होना, डबल सेवा करती हो, बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है. सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो. सभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं. बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो. राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट जनक. प्रकृति जीत का अच्छा ही पाठ बजा रही हो. अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है. प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है. अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे. विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा. सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है. इसलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई. अच्छा माइक लाया. याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है. अच्छा बगीचा तैयार किया है. अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं. एक तो कहा बाप समान हो, बाप समान वरदानी. दूसरा कहा चक्रवर्ती राजा हो. तीसरा कहा प्रकृति जीत हो. ये तीन बातें कही है. संकल्प से जो मनसा सेवा की थी, 83 की मुरली चल रही है. संकल्प से जो मनसा सेवा की थी उसकी सफलता देख रहे हो. '74 से लेकर अब तक दादी का जो पाठ है यज्ञ में, सबसे अपूर्व, सबसे अद्भुत. सारे विश्व में अध्यात्म का परचम लहराया. सारे विश्व में अध्यात्म की का संदेश लेकर जाने वाली यह आत्मा. अगर दादी का जीवन देखे तो उसमें त्याग, तपस्या, सेवा, तेजस्विता और सभी दिव्य गुणों से वो भरा है. कुछ समय पहले दादी ने हमें यह किताब दी थी. जब यह किताब पब्लिश भी नहीं हुई थी तब दी थी. अभी तो है सब जगह. ये किताब जो लिखी है लिज हॉजकिंसन ने लिखी हुई है, जो कि लंदन में रहते हैं और बहुत सहयोगी है यज्ञ के. तो इस किताब में, किताब का जो नाम है दादी जान की सेंचुरी ऑफ सर्विस, शायद बहुतों ने पढ़ी होगी, ये सेवा की शताब्दी. इस किताब में एक बहुत सुंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, द रोल ऑफ इलनेस, पेज नंबर 149। इलनेस, दादी के जीवन में बाबा जो कह रहे, प्रकृति जीत। बचपन से लेकर अब तक अगर देखा जाए मेडिकल हिस्ट्री को, तो बीमारी बीमारियां हैं। ऐसा बहुत कम समय है जब बीमार नहीं है। अभी बीमार नहीं है शरीर, तो बचपन से ही इतनी सारी बीमारियां हुई है शरीर को, परंतु उन बीमारियों के चलते भी जो कार्य कर दिखाया वो अद्भुत है। ये जो चैप्टर है 149 पेज नंबर पर, रोल ऑफ इलनेस, इसमें इस लेखिका ने, शायद हमें लगता है ये लेखिका बहुत ज्यादा यज्ञ में, मतलब सहयोगी है केवल, ब्रदर नेविल करके है उनकी युगल, तो सीधा इस बुक से ही चालू करते हैं आज, क्योंकि हमें नहीं लगता बहुतों ने यह किताब शायद पढ़ी होगी। जो लिखने का दृष्टिकोण है लेखिका का, क्योंकि इसका भी जन्म उधर ही हुआ है विदेश, तो उन्होंने दादी का कंपैरिजन वहां के जो गणमान्य व्यक्ति है, फेमस पर्सनालिटीज है, उनके जीवन के साथ किया है। उनके जीवन में भी बहुत सारी बीमारी आई, दादी के भी जीवन में बीमारी आई। वो भी ऐसी आत्मा है कि बीमारियों के चलते भी विश्व के मंच पर महान कहलाई गई। दादी के जीवन में भी बहुत सारी बीमारी आई, उसके बाद में भी इस अध्यात्म के शिखर तक वो पहुंची। दादी के जीवन में और उनके जीवन में क्या समानता है, और दादी का जीवन कैसे महान है। पर जैसे हमने कहा, इन्होंने जो भी लिखा है, लिखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी बातों का इस लेखिका को पता नहीं है, क्योंकि वो लौकिक रीति से कंपेयर कर रही है कि इनके जीवन में भी बीमारी, उनके जीवन में भी बीमारी, उन्होंने भी महानता को पाया, इसने भी महानता को पाया। ये दृष्टिकोण है। तो इसी किताब से चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 11, द रोल ऑफ इलनेस, पेज नंबर 147। दादी जान की मच लाइक थेरोटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग इज अ मेडिकल मिस्ट्री। सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसके साथ कंपेयर किया गया है दादी को, वो है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, व्हेन स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोस्ड विद मोटर न्यूरॉन डिजीज एट द एज ऑफ 21, ही वाज एक्सपेक्टेड टू लिव 2 to 3 years. ही इज नाउ 73 एंड वर्किंग एज हार्ड एज एवर। स्टीफन हॉकिंग नाम का जो व्यक्ति है, 21 साल की उम्र में उसे जो बीमारी हुई थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, लैटरल अमायोटोपिक स्क्लेरोसिस नाम की, उसमें व्यक्ति के धीरे धीरे एक एक अंग काम करना बंद कर देते हैं और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज उसकी उम्र 73 है। भौतिकी, ही इज अ फिजिसिस्ट, भौतिकी वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, और इसने जो भी बहुत सारी खोजें की है, इस जिसको विश्व को ये लोग ब्रह्मांड कहते हैं, कि बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल्स, इसके ऊपर जो रिसर्च की है शायद ही किसी ने की है, और जितना मान सम्मान इसे आज प्राप्त है, जबकि ये बोल भी नहीं सकता है, वहां कंप्यूटर की मशीन लगी हुई है, उसके आधार से वो बोलता है, अभी भी है। अभी ये किताब ही पब्लिश ही हुई है 2016 में, हाँ अभी ये साल ही निकली है। पर दादी ने हमें ये किताब जब दी थी, तब इस तरह से किताब नहीं थी वो, जब ही कि ये लिखी जाने वाली थी, लिख चुके थे पर प्रिंट वो सब नहीं हुआ था। दादी जानकी टू हैज डिफाइड मेडिकल प्रोग्नोसिस। अभी कंपेयर कर रही है लेखिका दादी के साथ, स्टीफन हॉकिंग को लिया, उसकी बीमारी 21 साल की उम्र में, इतनी बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा 2 साल में मर जाएगा, पर आज तक जिंदा है वो, और इतने बड़े बड़े काम उसने किए। दादी जानकी टू हैज डिफाइड मेडिकल प्रोग्नोसिस, कॉन्स्टेंटली इल फ्रॉम चाइल्डहुड विद सीरियस डिबिलिटेटिंग कंडीशन, शी हैज कंटिन्यूअसली बाउंस्ड बैक टू लाइफ अनदर डे। दादी को भी बचपन से ऐसी ऐसी बीमारियां हुई, ऐसा लगता था आज बीमार है, पर दूसरे ही दिन देखो तो बाउंस्ड बैक टू लिव अनदर डे, छलांग मारी दूसरे दिन और फिर से जीवन जीने के लिए तैयार। When asked the secret of his long life, with virtually no organ still working, Stephen Hawking replied, as he entered his 74th year, in the robotic voice for which he has become world famous, that It was down to two factors, doing a job he loved and excellent care all his life. स्टीफन हॉकिंग को पूछा गया कि राज क्या है तुम्हारे जीवन का, इतनी सफलता को कैसे पाया? वो कहता है दो कारण है, एक तो मैंने हमेशा वो कार्य किया जिसे मुझे प्रेम था, जो मुझे करना था। अगर हम भी देखें अपने जीवन में, शायद बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हमें, जिनसे हमें प्रेम ही नहीं है, ऐसे जॉब्स हम कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पास डॉक्टर मानस थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि उनका रस ये सब चीजों में नहीं है, मेडिकल चीजों में उनका रस कहीं और ही था, उनका इंटरेस्ट कहीं और ही था। अभी वो यहां से गए अहमदाबाद, वहां उनको एक अलग प्रकार की जो जॉब मिली है या जो कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ, और उसमें वो अभी बहुत खुश है। यहां पर भी कभी उन्होंने सुनाया था, पर हमने देखा था उनको इस तरह से पेशेंट देखना, सीरियस पेशेंट ट्रीट करना, रहे यहां परंतु द जॉब ही लव्ड वो अभी कर रहे। अभी अभी व्यासा में भी आए थे। दादी जानकी कुड प्रोबेबली से द सेम, ये लिखती है कि शायद दादी जानकी भी ऐसा ही कह सकती है। हर लॉन्ग लाइफ हैज बीन स्पेंट डूइंग अ जॉब शी लव्स, दादी ने हमेशा वो किया जो उसे करना था, जिससे उसे प्रेम था। एंड शी टू हैज हैड एन एक्सेलेंट केयर फ्रॉम द पीपल हु लव्ड हर, और उसे भी उन सभी व्यक्तियों से प्रेम मिला, क्योंकि उसके जीवन के साथ कंपेरिजन हो रहा है ना, स्टीफन हॉकिंग के साथ। आई थिंक दैट परहैप्स वी कुड ऐड अ थर्ड फैक्टर टू द लॉन्ग लाइव्स ऑफ बोथ दीज एक्सेप्शनल पीपल एंड दैट इज, लेखिका कहती है शायद एक तीसरा फैक्टर भी है, और वो है लव एंड एडुलेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो प्रशंसा मिली और प्रेम मिला। यहां हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, ये लिखती है शायद ये लोग जो महान बने इनको जो प्रशंसा मिली उसके वजह से, also both Hawking and Dadi Janki are extremely feisty, rarely refusing an invitation to speak or appear at a public event. ये दोनों इतने enthusiastic है कि दोनों को कभी भी invitation दिया गया public event के लिए कभी भी ना नहीं किया, या फिर कभी भी कहीं बोलने के लिए बुलाया गया और उन्होंने ना किया, ऐसा नहीं हुआ। However difficult the journey for them, यात्रा भले ही कितनी भी कठिन हो, हॉकिंग वॉट एट द प्रीमियर ऑफ द फिल्म ऑफ हिज लाइफ, अभी अभी स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर एक फिल्म बनी है द थियरी ऑफ एवरीथिंग, उसका जो प्रीमियर था वहां पर भी वो पहुंच गया था, उसको उठा के लेके आना पड़ता है, वो बोल चल नहीं सकता है, वो मुर्दा लाश की तरह है, स्टीफन हॉकिंग मतलब मुर्दा लाश, उसको दो लोग पकड़ के उठा के लेके घूमते हैं इधर उधर, वो कोई भी अंग काम नहीं करता है शरीर का, फिर भी वो जिंदा है और चल रहा है। और वो कैसे आया, ड्रेस्ड अप इन हिज व्हीलचेयर इन ब्लैक टाई। स्टीफन हॉकिंग्स इलनेस वाज डायग्नोस्ड एट एन अर्ली एज एंड फॉलोड द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अर्ली डेथ, बट नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन रॉन्ग विद दादी। ये लिखती है कि शायद दादी के साथ क्या गलत, क्या बीमारी है अब तो कोई समझ नहीं पाया। शी हैड एन हार्ट, she has had heart and digestive problem for many years. She had TB as a child and for many years was plagued by persistent severe cough. In 1982 she was out of action for a year with thyroid deficiency that doctors in London failed to recognize. She spent virtually the whole of that year in isolation, only seeing people for a very short spell. Aged 80, during severe winter in Mount Abu, she had double pneumonia and almost died. She counted her recovery from this in January 1991 as a new birth. 1980 में दादी को ऐसा pneumonia हुआ था कि जैसे अभी लग रहा था कि इनसे बचेगी नहीं। दादी 1991 में कहती है कि मुझे नया जन्म मिला वो बीमारी से, और उसके बाद में भी थायराइड की प्रॉब्लम। Since then she had two stents inserted to improve her coronary circulation. Heart में भी stent डला हुआ है। Even today as an aftermath of three falls, she had chronic pain from spinal fractures and also gastric pain from diverticulitis and hernia. And although she recovers from her bouts of serious illness, there is always a probability that she will become ill again and on her death's door. What we can say about both Dadi Janki and Hawking is that they could not have achieved more if they had been in robust health all their lives and may even have achieved less. लेखिका लिखती है कि अगर इन दोनों को, स्टीफन हॉकिंग को और दादी जानकी को, ये बीमारियां नहीं होती तो क्या वो अभी जिन्होंने जितना उन्होंने पाया उससे ज्यादा पा सकते थे? अगर ये बीमारियां नहीं होती तो वो कहती है शायद नहीं. बट इन दादीज केस एटलीस्ट वी कैन से वाई शी सो ऑफन इल एंड डू हर फ्रिक्वेंट इलनेसेस सर्व एनी वाइडर पर्पस. क्या दादी की ये जो बीमारियां है क्या इनका कोई और कारण है? दादी मेंटेन्स दैट. दादी कहती है कि इलनेस हैज द बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड. दादी कहती है जो बीमारियां हुई है मुझे वो उससे जैसे एक वरदान प्राप्त हुआ एकांत का. पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ हर इलनेसेस मस्ट बी दैट शी सेट्स हरसेल्फ सच अ पनिशिंग स्केड्यूल. शी इज द योगी द गुरु हु नेवर स्लीप्स और हार्डली एवर एंड देन हर कॉन्स्टेंट ट्रेवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट टेक इट्स टॉल. But maybe there is more to the story. Perhaps for Dadi, illness itself has played an important part in her ability to achieve what some people might consider the impossible. Dadi ne bimariyon ke wajah se jo paya ya bimariyon ki halat mein paya jo shayad duniya walon ke liye asambhav tha. Asambhav ko sambhav karne ke liye jaise ye karan bana bimariyan. यहाँ ये पूरा होता है. अब दूसरी महिला के साथ दादी के जीवन को कंपेयर किया गया है और दूसरी ये महिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी नर्सिंग आंदोलन की जनक. जितनी भी नर्सेस है विश्व भर में, नर्सिंग पहले थी ही नहीं दुनिया में. नर्सिंग को एक निकृष्ट व्यवसाय समझा जाता था, जो कि यहाँ पे इन्होंने भी कहा है. चार्ल्स डिकिंसन की एक नॉवेल पब्लिश हुई थी मार्टिन चिजलविट, उसमें एक नर्स दिखाई थी जो हमेशा पियकर थी और पीती रहती थी और कहीं पर भी पड़ी रहती थी पीकर छाता लेकर अपने सारा गैम करके. तो वो जो नर्स थी उसके वजह से नर्सेस जो इस तरह से प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे, कुख्यात थी कि ये बिल्कुल जैसे कि कुछ काम की नहीं है, एकदम गंदा रहना. मतलब कोई भी अच्छे घराने की माँ बाप अपनी बेटी को कभी नर्स नहीं बनाते थे. सबसे पहला आंदोलन जो चालू किया वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया और इतने बड़े घर में जन्म ली, परंतु उसको सेवा का मार्ग चुना. उसने अपने जीवन कहानी में भी लिखा है कि नोट्स ऑफ नर्सिंग में कि मुझे जैसे कॉल आया ऊपर से, एक एक आह्वान हुआ ऊपर से कि आ जाओ. इस लेखिका ने लिखा है दादी जानकी को भी ऐसा ही कॉल आया ऊपर से कि अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दो. जैसे उसे कॉल आया और क्रीमियन वॉर हुआ था उस समय, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में अपने हाथ में एक लालटेन लेकर जाती थी और सारे मरीजों की सेवा करती थी जबकि सारे चिकित्सक निकल जाते थे. द लेडी विद द लैम्प. जीवन भर अविवाहित रही, अनमैरिड, और सेवा में लगा दिया. कई लोग उससे शादी करना चाहते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उससे शादी करना चाहते थे, पर ये ऐसी महिला थी कि जो जो उससे शादी करना चाहते थे सबको इसने काम में लगा दिया. ये लेखिका दादी जानकी का भी वर्णन करती है कि जो जो बड़े बड़े लोग इसके संपर्क में आए उन सबको इसने सहयोगी बना दिया और काम में लगा दिया. इन ऑर्डर टू गेट अ क्ल्यू वी कैन टेक अ लुक एट द लॉन्ग लाइफ ऑफ अनदर ग्रेट रिफॉर्मर फ्लोरेंस नाइटिंगेल. आफ्टर शी केम बैक फ्रॉम द क्रीमियन वॉर फ्लोरेंस मोरलेस वेंट टू बेड फॉर 50 ईयर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये जो महिला थी 50 साल तक बीमार थी. क्रीमियन युद्ध जो हुआ उसमें इसने बहुत सेवा की, सेवा करने के बाद खुद ही बीमार हो गई और वो बीमारी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई. सारा जीवन बीमारी में गुजरा परंतु उसने क्या कुछ नहीं कर दिया. नाइटिंगेल स्कूल खोला, कितने सारे नर्सेस को ट्रेन किया और नर्सिंग को प्रोफेशनल बना दिया, जबकि वहां पर मरीजों को गंदे खाट पर गंदे कपड़े, कभी क्लोथ चेंज नहीं किए जाते थे, इतनी सारी बीमारियां रहती थी. इसने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया. इसके लिए पायनियर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है इसको. यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रॉम हर सिक बेड शी प्रोसीडेड टू इन्वेंट द मॉडर्न नर्सिंग प्रोफेशन एंड एस्टैब्लिश नर्सिंग एज अ प्रॉपर करियर. शी ऑल्सो इनेक्टेड मेनी सोशल रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली वेयर वेमेन वेर कंसर्न्ड एंड बोथ वेमेन वेर कंसर्न्ड फ्रॉम एन अर्ली एज. बोथ वेमेन, दादी जानकी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका ऐसी मानना है फ्रॉम एन अर्ली एज दे रिसीव्ड कॉल फ्रॉम गॉड टू डू हिज वर्क एंड एज सच वुड नॉट लेट एनीथिंग स्टैंड इन देयर वे. कोई भी चीज, कोई भी बाधा उनके मार्ग में नहीं आ सकती थी. दोनों को ही ऐसा उनका कन्विक्शन था, ऐसा उनका फेथ था, बिलीफ था. लाइक दादी जानकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हर्ड कॉल्स अर्जिंग हर टू डिवोट हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ अदर. शी केम फ्रॉम अ रिच वेल कनेक्टेड फैमिली वेयर वुमेन वेयर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लिविंग. इंडीड मोस्ट ऑफ द मेन नेवर वर्कड ईदर. फ्लोरेंस फादर विलियम नेवर डिड अ डेज वर्क इन हिज लाइफ. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो पिता थे इतने रिच थे कि उसने कभी कुछ खुद भी काम नहीं किया. वो अपनी उसकी बेटी चाहती थी कि सेवा करे गरीबों की, कैसे करने देता उसका पिता. ऑल्दो ही डिड एजुकेट हिज डॉटर एट होम ऑल्सो लाइक दादी जानकी, फ्लोरेंस डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी एज शी फेल्ट मैरिज वुड हिंडर हर एबिलिटी टू डेडिकेट हर लाइफ टू नर्सिंग. बिफोर शी बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट फेमस नर्स इन हिस्ट्री, नर्सिंग द सिक वॉज समथिंग अंडरटेकन बाय द लोएस्ट इन द सोसाइटी. जैसे कहा चार्ल्स डिकिंसन की जो नॉवेल थी मार्टिन चिजलविट नाम की, उसमें जो नर्स थी सारा गैम इज परहैप्स कैरिकेचर, जैसे कार्टून समझा जाता था नर्सेस को, कैरिकेचर. बट नर्सेस वे जनरली सीन एज ड्रंकन अनएजुकेटेड वुमेन हु अंडरटूक वर्क नो डिसेंट वुमेन वुड कंसिडर. फिर इसके बाद में थोड़ा और यहाँ वर्णन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन का. और फिर वापस वही जो बात हमने कही कि दादी जानकी टू अट्रैक्टेड मेनी लॉयल लेफ्टिनेंट्स हु शी केप्ट हार्ड एट वर्क इन हर सर्विस और सर्विस ऑफ गॉड. तो ये एक दूसरे व्यक्ति का वर्णन. अभी तीसरा व्यक्ति का यहाँ वर्णन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध कवियत्री हुई है एलिजाबेथ ब्राउनिंग. अभी उसका भी जीवन ऐसा है कि वो भी बीमार रही है, बहुत समय तक वो बीमार ही रही. और उसके जीवन में भी दिखाया है कि इतने बड़े घर में, परिवार में वो जन्म ली, ग्यारह बहन भाई थे. और 6 साल की उम्र से एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने लिखना चालू कर दिया. 15 साल की उम्र में तो उसकी किताब भी पब्लिश हो गई थी कि पोएट्रीज की, और लिखती रही, परंतु फिर बीमार पड़ी. यहां लेखिका कहती है उसके जीवन में एक नया व्यक्ति आया, और यहां दादी के जीवन में भी एक व्यक्ति आया. इसके जीवन में व्यक्ति जो आया एलिजाबेथ ब्राउनिंग के जीवन में, एक दूसरा कवि आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक कवि है. उस व्यक्ति ने इस स्त्री को एक शब्द कहे थे, आई लव यूर वर्सेस विथ ऑल माई हार्ट माई डियर मिस बेनेट बैरेट एंड आई लव यू टू. ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है. और रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ को कहता है कि तुमने जो लिखा वो मुझे बहुत प्रिय है, और इस वाक्य से उसका जीवन परिवर्तन हो गया. लेखिका लिखती है कि दादी जानकी के जीवन में भी ऐसा एक व्यक्ति आया कि जिसने उसको कुछ कहा और उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो स्वयं भगवान. तो और इसमें तो ऐसा दिया है कि वो जो बीमार थी ऐसी बीमार थी कि शायद ये भी ऐसा था कि वो बच नहीं सकती थी. ये जब बीमार पड़ी उसके पिता खिलाफ थे उसके, रॉबर्ट के, और ये नहीं चाहते थे कि उसके साथ शादी हो. अपनी पूरी संपत्ति जायदाद थी उसके, ये कर दिया उसको डिसइनहेरिट, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बेदखल कर दिया. फिर भी वो उसके साथ भाग के उसने शादी की. शी लोप्ड एंड मैरिड रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो ये दूसरा अभी चौथा. फिर से ये ऑथर कह रही है कि इन दोनों में, इन सब में क्या कॉमन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में, एलिजाबेथ ब्राउनिंग में और दादी जानकी में. अभी यहाँ एक अच्छा वाक्य है, ऑल आर और वर रिमार्केबली टैलेंटेड एंड सिंगल माइंडेड वेमेन हु यूज्ड इलनेस वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टू रिटेन एन एयर ऑफ मिस्ट्री एंड रिमोटेडनेस दैट नेवर बी लेस इनएक्टेड देम टू डू ग्रेट थिंग्स. इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट दादी स्टिल रिसीव्स एंड अपलिफ्ट्स पीपल इवन ऑन हर सिक बेड. कहा है कि ये तीनों ही महिलाएं जो है एक्सट्रीमली टैलेंटेड महिला है और सिंगल माइंडेडनेस, बस एक ही लक्ष्य है जीवन का. और इनकी बीमारियों ने ही जैसे मदद की है इनको इस महानता तक पहुंचाने के लिए. अभी चौथी महिला का वर्णन है वर्जीनिया वुल्फ. ये तो हम नहीं समझते ये बहुत महान थी, परंतु विदेश में इसे बहुत महान समझा जाता है और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी, परंतु इसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर था, इसने बाद में सुसाइड भी कर ली थी। तो यहाँ पर इसका भी एक वर्णन है, फिर से यहाँ पर आ रहे हैं कि ये बीमारी जब होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये लेखिका लिखती है, इलनेस कैन गिव टाइम टू थिंक, टाइम अवे फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिमांड ऑफ अदर पीपल इन ऑर्डर टू हैव पीस एंड स्पेस टू फर्दर वंस वर्क। कि बीमारी के क्षणों में हमें समय मिलता है स्वचिंतन के लिए, संसार से हम दूर होते हैं, स्वचिंतन, और यही समय दादी को भी मिला। और एक व्यक्ति के साथ वर्णन है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा। ये लेखिका कहती है कि ये जैसे एनफोर्स मेडिटेशन ही था, एक जबरदस्ती जैसे कि वो ध्यान अवस्था उसे प्राप्त हो गई थी, क्योंकि इन्हीं 27 साल में उसने बहुत कुछ चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, ये सब किया। लेखिका लिखती है कि दादी बचपन से लेके 2016 से लेके तो 2016 तक कितनी सारी बीमारियां हुई है, परंतु इन बीमारियों में भी जैसे वो एक मेडिटेशन था उसका, वो बीमारी थी ही नहीं, वो मेडिटेशन था पूरा उसका। तो ये नेल्सन मंडेला के साथ यहाँ वर्णन है। अभी और एक चीज कही है कि इतनी सब ये तो हुआ और दादी को जितना सम्मान प्राप्त हुआ, बट दादी वॉज नॉट द पर्सन हु वुड रेस्ट ऑन हर लॉरेल्स। जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि, जितने सम्मान उसको प्राप्त हुए, ऐसा नहीं कि सम्मान मिल गया अभी शांति से आराम से बैठो, रुकने वाली नहीं है ये महिला। एक मिला चलो आगे 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 आगे, ये अपना एक दृष्टिकोण लिखा है यहाँ लेखिका ने। फिर यहाँ पर और एक बात कही है कि दादी को पूछा गया उसके बीमारी के बारे में तो उसने क्या कहा। ये देखो, ये सारा जो लिखा गया ये विदेश का पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण जो है विदेश का दृष्टिकोण क्या है, भारत का दृष्टिकोण नहीं है। ये विदेश के लोग कैसे सोच रहे हैं, देख रहे हैं दादी को, तो वहां की जो महान आत्मा है उनके साथ में कंपेरिजन कर रहे हैं। और फिर बीमारी के बारे में पूछा गया तो दादी क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेज देर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ कर्मा और वॉट यू ब्रिंग और वॉट यू ब्रिंग विथ यू फ्रॉम प्रीवियस बर्थ और बर्थ ऑल दो दिस इज नॉट अ डॉक्ट्रिन दैट एवरीबडी एक्सेप्ट। लेखिका लिखती है कि शायद इसको सब नहीं मानेंगे उधर के विदेश के लोग, परंतु दादी ऐसा कहती है कि उसको जो भी बीमारी हुई है वो पास्ट के कर्म भोग है, परंतु बीकेएस डू नॉट इंडल्ज इन टू पास्ट लाइफ और एज सम थेरेपिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट हैव डन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट इट इज इनफ फॉर देम टू बिलीव दैट वॉट एवर हैपन्स टू देम इन दिस इनकार्नेशन इज इन सम सेंस रिलेटेड टू वॉट वेंट बिफोर। लेखिका लिख दी है ये बीके लोग जो है इनको ये लेना देना नहीं है कि पास्ट में हमने क्या क्या किया, बस वो इतना मानते हैं कि पास्ट का कोई कर्म है, जैसे वहां की साइकोलॉजी ढूंढ दे कौन सा कर्म, वैसे बीके जो इनको ये सब लेना देना नहीं, वो खाली इतना कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई कर्म है। इलनेस कैन बी अ काइंड ऑफ कर्मिक अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ। फिर दादी जानकी के का क्या मत है बीमारी के बारे में, उसने लिखा है कि दादी कहती है कि दो कारण होते हैं बीमारी के, वो दो कारण कौन से है, पहला तो है लेजीनेस और केयरलेसनेस और दूसरा कारण है एडिक्शन। पहला है आलस्य विलंबन और दूसरा है कोई ना कोई लत, एडिक्शन। अभी ये आलस्य विलंबन किस लिए, नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग द रॉन्ग थिंग्स, गलत गलत खान पान, एंड सकमिंग टू हेल्थ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स सच एज ड्रिंकिंग और ड्रग टेकिंग, ड्रिंक करना या ड्रग्स लेना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है बीकेएस के बारे में, देखो विदेश का पर्सपेक्टिव क्या है। वो लेखिका लिखती है बीके लोग जो है खाना पाना अच्छा है, खान पीन बहुत अच्छा है उनका, होममेड कुक्ड प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ये सब अच्छा है। पर उसने एक बहुत जबरदस्त बात कह दी है यहाँ पर। क्या लिखती है देखो, इन सच अ वे द बीकेएस ट्राई टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वन थिंग मेनी हैव लेट स्लिप इन देयर लाइफ दो इज लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। बीकेएस के जीवन में एक बात फिर भी मैं देखती हूँ कि ये नहीं है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। व्यायाम नहीं करते बीकेएस। द योगा दे प्रैक्टिस डज नॉट इंक्लूड हट और पोस्चरल योगा एंड ऑल्दो द फाउंडर ब्रह्मा बाबा इंसिस्टेड दैट ऑल द अर्ली बीकेएस डिड रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप फिट, दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। वो लिखती है कि इन सबके जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं, और लिखती है कि योगा ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो हठ योग नहीं है। एक्चुअली वो कह रही है हठ योग इन्हें करना चाहिए, क्योंकि कहती है कि ब्रह्मा बाबा जो था वो इंसिस्ट करते थे कि अर्ली बिकेज जो है वो एक्सरसाइज करे, परंतु अभी अभी वर्तमान के जो बिकेज है उनके जीवन के रूटीन में फिजिकल योगा नहीं है। बहुत बिजी हो गए दीज डेज। देखो जबरदस्त बात लिखी है, दीज डेज मेनी बिकेज बिकम ओवरवेट एंड एज अ रिजल्ट सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड अदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेस केयरलेसनेस। और इज इट दैट दे कंसिडर दे डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज, या वो ये समझते कि उनके पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए? विदेशी लोग की दृष्टिकोण बहुत जबरदस्त होती है, वो सब देखते हैं, अच्छी चीजें तो देखते हैं पर और भी बहुत सारा देख लेते हैं यहाँ के और एक चीज जो लिखी है एडिक्शंस, कोई ना कोई लत, आदत, नशा जिसको कहेंगे। तो यहाँ तो दादी ने जो कहा है, दादी जिस इस नशे के बारे में, आदत के बारे में कह रही है, वो कह रही है निगेटिविटी, स्ट्रेस, रॉन्ग वेज ऑफ थिंकिंग, एंगर एडिक्शन, क्रोध करने का एडिक्शन। तो ये सारी बातें, और दादी ने फिर यहाँ कहा है द बेस्ट वे टू डील विद एडिक्शन वेदर द रिजल्ट फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज और रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग इज वंस अगेन मेडिटेशन। फिर यहाँ पे और एक बात की है कि दादी खुद एक नर्स थी, दादी खुद भी एक नर्स थी, इसके लिए उसे बहुत सारा चीजें पता है। अर्ली बी केज की दादी ने बहुत सेवा की है, वो सेवा चालू हुई थी 1941 में, जो हंसा बहन ने हमको बताया 1941 से दादी ने जैसे कि सेवा करनी चालू की थी एज अ नर्स। तो माउंट अबू में आने तक 1954 तक, जब तक जब उन्होंने बाबा ने उन्हें फिर मुंबई में एक बार भेजा था शायद, उसके भी बाद तक चालू थी, एग्जैक्ट किसी को कुछ पता नहीं है कब तक। तो दादी खुद एक नर्स थी, इसके लिए दादी ने और एक चीज कर दी, और वो चीज थी हर फ्रीक्वेंट इलनेसेस हैव आल्सो सर्व्ड द पर्पस ऑफ टर्निंग हर अटेंशन टू हेल्थ केयर। दादी को यह भी पता था डॉक्टर्स की क्या समस्या है, नर्सेस की क्या समस्या है, इसके लिए अंडर हर गाइडेंस जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर लेटर रीनेम द जानकी फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर स्थापन हुआ 1997 में, कहां पर? एट रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन लंडन। इट इज अ यूके बेस्ड चैरिटी सपोर्टिंग रिसर्च इनटू द लिंक्स बिटवीन हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद से चालू हुआ विहासा, और उसके बाद से ये जो मेडिकल विंग और मेडिकल की ये सारी कॉन्फ्रेंसेस किस पे फोकस कर रही है? फिजिशियन हील थाइसेल्फ, हे चिकित्सक पहले खुद ही को ठीक करो फिर बाकी विश्व को ठीक करना, उसको कहा जाता है फिजिशियन हील थाइसेल्फ, पहले खुद तो ठीक हो जाए। ये प्रेरणा यहां से आई, उसकी प्रेरणा दादी जानकी के जीवन से जो कि नर्स का काम किया, उसकी प्रेरणा ब्रह्मा बाबा ने ये कार्य दिया, उसकी प्रेरणा शिव बाबा ने। लिंक देखो कहां पर है, परमात्मा, आदि पिता, दादी जानकी, जानकी फाउंडेशन, व्यासा, मेडिकल विंग, और विश्व भर में डॉक्टरों की और नर्सेस की ये सारी सेवाएं। कितनी गहरी बातें हैं। So, he established to inaugurate it in 1997 at the Royal College of Physicians in London. It is a UK-based charity supporting research into the links between health and spirituality. फिर लास्ट में वो जानकी फाउंडेशन के बारे में दादी ने कुछ ब्लेसिंग्स दी है यहाँ पे। इस किताब के फर्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल वाक्य जो लिखा गया है, जयंती बहन का इसमें इंट्रोडक्टिव प्रिफेस दिया हुआ है, जयंती बहन ने लिखा है इस किताब में क्या क्या है, और यहाँ पे शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में एक वाक्य लिखा है दादी जानकी का, लिखा है इफ एन एल्डरली इंडियन लेडी, यदि एक भारतीय बुजुर्ग महिला हु कांट स्पीक इंग्लिश, जिसे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, एंड हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं है, नो होम, जिसके पास कोई घर नहीं है, नो एजुकेशन, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कैन एक्वायर स्टेटली इंग्लिश होम, इंग्लिश स्टेटली होम यदि उसे मिल सकता है विदेश में, अंग्रेजों के देश में एक घर वो बना सकती है, वेल एनीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, अगर ये संभव हो सकता है, इफ एन एल्डरली इंडियन लेडी हु कांट स्पीक इंग्लिश एंड हु हैज नो मनी नो होम नो एजुकेशन कैन एक्वायर एन इंग्लिश स्टेटली होम, वेल एनीथिंग इज पॉसिबल. ऐसी महिला जो कि जो इंग्लिश नहीं जानती और सारे विश्व भर में अध्यात्म का परचम लहराती है, कोई साधारण तो हो नहीं सकती. जिसका वर्णन, जिनके साथ इसके जीवन का कंपेयर किया लगता है, किया है, मुझे लगता है ये सारे व्यक्ति जो है संसार की तुलना में फेमस है, परंतु ये तो ज्ञान में भी नहीं है. वो वर्जीनिया वुल्फ जिसने आत्महत्या कर ली, वो इजिलाबेथ ब्राउनिंग जो उसके साथ भाग गई और फिर शादी की, चाहे वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो. फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितने साल बेड पर पड़ी थी पर कहते वो डिप्रेशन में थी कितने साल. स्टीफन हॉकिंग, ये सारों के साथ जिसके जीवन का वर्णन किया, कहां ये और कहां वो. तो ये तो भगवान ही कह सकता है कहां ये है. इनको लेटर लिख दे. ये तो अच्छी सहयोगी आत्मा है, सभी का योगी का बनने का तो पार्ट नहीं है ना, सहयोगी है इतना ही बहुत है. हाँ, इन इन जयंती बहन ने एक चीज और लिखी है यहाँ पे. ये जो बहन है लिस लॉच हॉजकिंसन, इनका तलाक हो गया उनके पति के साथ, युगल के साथ. ये भी चीजें यहाँ लिखी है क्योंकि नेविल भाई जो है वो पूरे योगी है, उन्होंने जो छोड़ दिया फिर वो सब कुछ. तो ये बहन जो है ये सहयोगी है. इसी दृष्टि से इस किताब, मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब है, परंतु हिंदी का संस्करण तो कोई अवेलेबल नहीं है अभी, इंग्लिश में ही है ये. उधर कैंसर और में मिलेगी. तो जो भी है, आत्माएं सहयोगी है और दादी दादी के साथ 30 साल उस प्यूरिटी एंड वो कौन सी किताब है, एक अच्छी लाइब्रेरी में किताब है वो. उस किताब का नाम है जिसमें यज्ञ की इतिहास का वर्णन है, यज्ञ के इतिहास का. पीस एंड प्यूरिटी, बीकेस, पीस एंड प्यूरिटी, ये जो किताब है ये भी इसी ने लिखी हुई है. और एक है किताब जो इसी ऑथर ने लिखी है, व्हाई वुमेन बिलीव इन गॉड, वो सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन विद बीकेस यूरोपियन डायरेक्टर सिस्टर जयंती. सिस्टर जयंती के साथ उनका जो कन्वर्सेशन, ऐसी 3 किताबें इसने लिखी है और 1981 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है. पर बहुत अच्छी सहयोगी आत्मा है और लिखने का दृष्टिकोण भी बहुत ऊंचा है. हाँ, उनकी भी एक किताब है, वो भी अच्छी किताब है. दोनों ने किताब लिखी, दोनों ने दादी जान की. दादी ने हमको ये किताब दी थी बहुत पहले. ओम शांति. चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. विश्व भर में जो कि कौन सी आत्मा है, साहूकार आत्मी है. तो शाहू भाई, साहूकार आत्माओं को सकाश देने आ जाओ.